खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। कुर्सियों तीन बाप उसकी नौ आए, इस हिस्सा में से हम पढ़ेंगे फिर उसी हुक्म के बारे में जो कलीसिया तौर पर ईमानदारों के लिए है कि ईमानदार एक दूसरे से किस तरह पेश आए, किस तरह ईमानदारों की जिंदगी इस जमीन पर कलीसियाई वक्त में गुजरे। तो बाइबल मुकद्दस जो खुदा का मकाशफा है हम सबको इसीलिए दिया गया है कि हम खुदा बाप की, यीशु मसीह की, रूहुल कुद्दस की आवाज, मर्जी और मकसद को अपनी जिंदगियों में जाने। इसलिए हम सब मुबारक हैं कि हमारे पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है। बेशक बहुत दफा हमारे पास बाइबल होती है, हम उसे लाना, खोलना, उठाना, पढ़ना पसंद नहीं करते। कल मैंने अपने एक दोस्त ने मुझे बताया, खत के तौर पर उन्होंने मुझे खत भेजा और उस खत में उन्होंने एक औरत के बारे में बताया, चाइना की। चाइना की औरत थी, वहां की रहने वाली, और पिछले हफ्ते उसने पहली दफा क्या मिली है, बाइबल मिली है। 42 साल उसने क्या किया, इंतजार किया कि उसकी अपनी बाइबल हो। कितने, 42 साल। और उसकी गवाही उन्होंने लिखकर भेजी कि ये औरत पहली दफा उसने अपनी जिंदगी में उसे क्या मिली है, बाइबल मिली है। और 42 साल तक उसने इंतजार किया। खुदा की तारीफों के कोई ना कोई जैसे हम बाइबल मुकद्दस लेकर जाते हैं उन तक पहुंची। जैसे कल हम कार्ड बनवाने के लिए ले जा रहे थे, तो कार्ड बनवा रहे थे मेंबरशिप कार्ड। वहां पर कोई बंदा था, उसके लिए दुआ करते रहे। उसने जब कार्ड देखा कि ग्रेस बाइबल चर्च मेंबरशिप कार्ड है, तो उसने कहा कि जी क्या उर्दू में बाइबल मिल सकती है। मैंने कहा जी, तो मैंने उसी वक्त विशाल को भेजा और कहा कि जाओ जाकर एक बाइबल मुकद्दस और किताब लेकर आओ, जिंदगी का कुछ पता नहीं कि कब खत्म हो जाए और दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। उसी वक्त ये गया और हमने उनको बाइबल मुकद्दस दी और उसने पढ़ते पकड़ते ही बाइबल मुकद्दस को चूमा और कहा कि कितना इसका हदिया है। मैंने उसे कहा कि ये हमारी तरफ से तुम्हें क्या है, तोहफा है। तो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, इसकी हमें कदर करने की और कदर को जानने की जरूरत है। हमारे बाद जो नस्ल आने वाली है, जो आ चुकी है, जब यीशु मसीह वापस इस जमीन पर आएगा, कलीसिया उठाई जाएगी, तो जमीन पर बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कहर होगा, पानी और रोटी का नहीं बल्कि खुदा के कलाम का। इसलिए हमें खुदा के कलाम की कदर करने की जरूरत है। मैं हर रोज अपने आप को याद दिलाता हूं कि खुदा के कलाम को पढ़ना और उसे याद रखना कितना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास अगर 2000 रुपए वाली बाइबल है तो मैं दुनिया के कह सकता हूं कि 50 से 75% लोगों में ये बाइबल रखता हूं। 75% लोगों के पास अगर बाइबल है तो सादा है, लेकिन तो है ही नहीं। इसलिए हमें, चाहे हम पासवान हैं, चाहे हम सिर्फ स्टूडेंट हैं, चाहे हम चर्च के सेक्रेटरी हैं, चाहे हम सिर्फ बाइबल पढ़ने वाले हैं या पढ़ने वाली हैं, हमें खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। जैसे एक जगह पर मैंने उनको बाइबल दी, बहावलपुर में, मंडी जजमान में, वहां पर जब बाइबल मुकद्दस दी गई तो उनको मैंने कहा कि ये आपको पहली दफा मिली, उन्होंने कहा हाँ जी, बथेरों ने कहा कि ये मेरी पहली बाइबल है। तो मैंने कहा कि इसे पढ़ें, इसे मिट्टी पढ़ने के लिए ना रख दें या शोखी ना मारें कि मेरे पास बाइबल है, रेफरेंस बाइबल है। मेरे पास नया एडिशन है, बल्कि इसे पढ़ें ताकि आप उन वाकयात को, उन दिनों को, उन हालात को जब पढ़ें तो याद कर सकें, ताकि आपका जब परसीना, जब आपके हाथों की क्या कह सकते हैं कि खुशबू आपके बाइबल मुकद्दस के वर्कों में से आनी चाहिए, आपकी आपके आंसू उसके वर्कों पर नजर आने चाहिए, ताकि आपको याद हो कि आपने अपनी बाइबल पढ़ी है। तो बहुत दफा हम बाइबल लेते हैं लेकिन उसकी कदर को समझते नहीं, इसलिए मेरे साथ निकालें तुलसियों 3 बाप उसकी 9 आयत। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल हुक्म देता है ईमानदारों को और कहता है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। मेरे साथ सब कहें, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, ये हुक्म है कलीसिया के लिए कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो। हम बहुत दफा बेवजह झूठ बोल जाते हैं, इसीलिए खुदा का बंदा यकूब कहता है, क्या कहता है मेरे साथ देखें, यकूब का खत 1 बाप उसकी 19वीं आयत। यकूब 1 बाप उसकी 19वीं आयत में खुदा का बंदा यकूब, जो बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही संजीदा खुदा का कादम था, यू कहता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। सब कहें, सुनने में तेज, बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। क्या लिखा है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। सो हम बहुत दफा जल्दी जल्दी में हमें क्या करते हैं, खताएं करते हैं जुबान से, बहुत दफा जल्दी जल्दी में हम एक दूसरे की रसवाई, एक दूसरे की गिरियाजारी, एक दूसरे के लिए बददुआ मांगते हैं, इसलिए हमें बड़े सोच समझकर अपने मुंह को खोलना है। वाज की किताब में यहां तक लिखा है कि जब तू खुदा के हजूर जाए तो फजूल बात ना कर, यानी कि बगैर सोचे समझे ना मांग, ऐसा ना हो कि तू खुदा के फरिश्तों को और उसे बेजार करे, तंग करे। इसलिए हमें क्या करना है, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, बल्कि क्या बोलना है, सच बोलना है। क्या बोलना है, सच बोलना है। मेरे साथ जरा निकालें इफिसियों 4 बाप उसकी गालबन 25वीं आयत। इफिसियों 4 बाप उसकी 25वीं आयत, पस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अजू हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं। सो कलीसिया से बात हो रही है कि कलीसिया क्या करे, झूठ बोलना छोड़कर, अगर कोई कलीसिया में झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलना छोड़कर क्या बोले, सच बोले, सच कहे। और इसीलिए पालूस रसूल कहता है, एक दूसरे से झूठ बोलो, एक दूसरे के साथ झूठ ना बोलो। क्योंकि हमने पुरानी इंसानियत को, वो कहता है कि पुरानी इंसानियत के कामों समेत उसे उतार डाला है। अब हमारे उस गुनाहलुदा फितरत का राज हम पर नहीं, हम गुनाह के गुलाम नहीं, हमने गुनाह के सुपुर्द जिंदगी नहीं गुजारनी, ना ही उस पुरानी गुनाहलुदा फितरत के जो हमें कहती है झूठ बोलो, जो कहती है फरेब दो, जो कहती है कि गुनाह करो, जो कहती है कि खुदा पाकरू के खिलाफ लड़ाई करो। जिसे कहते हैं कि जिस्म की वो पुरानी ख्वाहिशात, पालूस क्या कहता है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला है। हमने किस तरह उस पुरानी इंसानियत को उतारा, जैसे सांप जब अपनी कुंज को उतारता है तो उसकी पुरानी जो सारी चमड़ी है, खलड़ी है, उतर जाती है और नहीं आ जाती है। जैसे छोटा सा पप्पू, जिसे कहते हैं मिट्टी वाला पप्पू, वो जब मिट्टी में रहता है तो वो उसमें फलता है, बढ़ता है, और उसके बाद जिन्हों कह देते हैं कोड़ी, छोटा पप्पू, वो पप्पू जब बड़ा होता है उसकी ऊपरली वाली जो खाल होती है उसका ऊपरला हिस्सा वो टूट कर उतर जाता है और उसके बाद वो क्या बनती है, तितली बनती है। हम सबको भी खुदा ने जो गुनाहगार थे, पुरानी गुनाह आलूदा फितरत जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं उसके गुलाम थे, खुदावन यीशु मसीह ने हमें नई मखलूक बनाया, ठीक उसी छोटे काले पप्पू की तरह। उसे जब कभी आपको मौका मिले देखने का कि तितली किस तरह पैदा होती है, वो छोटे से पप्पू से, वो पप्पू जब अपनी छोटा सा कीड़ा जब अपनी खाल को तोड़ता है उसमें से वो तितली निकलती है, ठीक जिस तरह सांप अपनी चमड़ी उतारता है और नई चमड़ी आती है। तो पालूस रसूल कहता है झूठ बोलना छोड़कर क्या करो, उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जिसके काम क्या है, बुरे। पुरानी इंसानियत के काम क्या है, झूठ, फरेब, लड़ाई, झगड़ा, चुगली, एक दूसरे को बुरा भला कहना, हसद हो गया, बर्दाश्त ना करना, किसी के बारे में बुरे ख्यालात रखना, खुद गर्जी, ये तमाम वो बड़ी लिस्ट बाइबल मुकद्दस में बयान करती है जो जिस्म की है, कि जिस्म के इन कामों से हमें परहेज करने की जरूरत है, जिसमें जादूगरी जिस्मानी काम है, बुत परस्ती जादूगरी और शहवत परस्ती और हसद और झगड़ा और खुद परस्ती और हर तरह के वो काम क्या है, जिस्मानी है। इसलिए पालूस कहता है बस हर कोई झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या करे, सच बोले। हम यहां पर कहेंगे कि हमारा पड़ोसी कौन है, हम सब एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं, हम सब एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं, ना ही हमें दुनियावी मतलब लेने की जरूरत है कि जो कोई मेरी गली में 10 हाथ इधर रहता है, 10 मकान इधर रहता है वो ही मेरा पड़ोसी है, या जो मेरे नजदीक में है वही मेरा पड़ोसी है। जब बाइबल मुकद्दस पड़ोसी की बात करती है तो वो घर के साथ घर वाले पड़ोसी के बारे में ही नहीं कहती। इसीलिए यीशु मसीह ने सामरी की, उस नेक सामरी की कहानी बयान की थी जो कि एक बंदा डाकुओं के बीच गिर गया और पहले दो ने उसकी मदद ना की, ना काहिन ने की, ना लावी ने की, और किसने की, एक सामरी ने। और यीशु मसीह ने उस आलमे शरा से जो शरीयत का और बहुत बड़ा वकील था उससे कहा कि इसका पड़ोसी कौन है, उसने कहा उसने जिसने उस पर रहम किया। तो आप जब एक दूसरे पर रहम करते हैं, जब आप एक दूसरे पर तरस खाते हैं तो आप उसने एक सामरी का क्या करते हैं, करदार अदा करते हैं, मैं आप हम सब। इसलिए कुलसियों 3 बार उसकी 9 आयत और फिर उसके बाद हम 13वीं आयत पढ़ेंगे। आए नौवीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। और क्या लिखा है? और नई इंसानियत को पहन लो, पुरानी इंसानियत को उतारो। पुरानी इंसानियत क्या मारती है? झूठ मारती है। पुरानी इंसानियत है जो बच्चों को बहुत दफा मजबूर करती है कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। पुरानी इंसानियत है जो हर एक को मजबूर करती है कि गालियां दे। पुरानी इंसानियत है जो कहती है नाफरमानी करो। पुरानी इंसानियत है जो ये नहीं चाहती कि हम खुदा का कलाम सुने। पुरानी इंसानियत ही है जो हमारी तवज्जो किसी और जगह पर ले जाती है ताकि हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ ना रहे। इसलिए पालूस रसूल कहता है और नई इंसानियत को पहन लिया, कि तुमने जिस नई इंसानियत को पहना है तुम नई मखलूक हो। कौन कौन नई मखलूक है यहां पर? नए तौर पर पैदा हुए, ईमानदार। शर्माते क्यों हैं? इस साल हम जो हौज बनाना था वो नहीं बना सके, लेकिन आने वाले साल में आप भी जिंदा रहें खुदा के फजल से, हम भी जिंदा रहें, और अगर यीशु मसीह वापस ना आ जाए तो हम वो यीशु मसीह के हुक्म को जो शगिर्दियत का बपतिस्मा है वो दिया जाएगा। और मैं तो चाहूंगा कि हर एक उस बपतिस्मे में सादा सी यही बात होगी कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ और हुई हूं, मैं ऐलान और इकरार करती हूं कि मैं यीशु की हूं और यीशु मेरा है और मैं उसके लिए जिंदगी बसर करूंगा और करूंगी, ताकि आसमान के फरिश्ते, ताकि वो तमाम बदरू हैं, ताकि वो तमाम ईमानदार जो खड़े हों वो इस बात को जाने। और जैसे बहुत दफा खामद और बीवी में लड़ाई होती है तो एक दूसरे को वादा याद दिलाते हैं, याद है ना वादा किया था कि मैं दुख में, सुख में, बीमारी में, तंगी में, परेशानी में, बदहाली में तेरे साथ जिंदगी गुजारूंगा, गुजारूंगी, याद होता ना मैं वादा। वैसे ही जब हम किसी गैर मबूद की तरफ मुंह फेरे तो पादरी साहब कलीसिया के और अपने पड़ोसी कहने वाले बने, याद है कि किसके लिए जिंदगी गुजारनी है? यीशु ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी सलीब उठाए जिसमें दुख ही दुख है। याद है कि जब आपकी दुआ का जवाब ना मिले तो किसी के पीछे जाकर तेती वाले बाबे, ठेकुआ वाले बाबे और किसी और बाबे को दर्जा नहीं देना, बल्कि यीशु मसीह को अपने दिल में रखना है। सो आने वाले साल में खुदा मुमकिन करे हम सब जिंदा रहें, और अगर यीशु मसीह ना आ जाए तो हम इस रस्म को करेंगे, इस हुक्म की ताबेदारी करेंगे। सो लिखा है और नई इंसानियत को पहन लिया जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालक की सूरत पर नई बनती जाती है। नई इंसानियत का मतलब है कि यीशु मसीह की सूरत पर ढलना। जैसे कुम्हार एक घड़े के मुताबिक दूसरा घड़ा बनाता है, वैसे ही खुदा चाहता है कि यीशु मसीह की तरह उसके करोड़ों अरबों फर्जंद बेटे और बेटियां हों जो उसकी ताबेदारी करें, ताकि हम अपने खालक की सूरत पर हों। जैसे आदम को उसने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और उसमें अपनी खासियत रखी और उसने गुनाह करके उस दर्जे को, उस अहमियत को, उस रूहानियत को, उस बरकत को खो दिया और खुदा ने कहा कि मैं फिर उसे अपनी सूरत पर बनाऊंगा। इसीलिए उसने हमें नई पैदाइश का तजर्बा दिया कि हम यीशु मसीह की सूरत पर नए बने, और जब उसकी सूरत में बनेंगे तो फिर चाहे कोई जलाया हो, चाहे कोई खोखर हो, चाहे कोई गिल हो, चाहे कोई यूनानी हो, चाहे कोई अबरानी हो, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे कोई नार हो, चाहे कोई काड़ू हो, चाहे कोई जो भी हो। क्या लिखा है? वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना वैशी, ना स्तोईकी, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। तो हमें इस नई इंसानियत के जोर में जिंदगी गुजारनी है। न इंसानियत यानी कि खुदा पाक रूह की तीन आवाज को। खुदा पाक रू मीठी और धीमी और बड़ी प्यारी आवाज से हमारे अंदर बोलता है, लेकिन बहुत दफा दुनिया का शोर, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया की चमकीली और चमकती धमकती बातें और हमारी अपनी ख्वाहिशें उस आवाज को दबा देती है। पालू, जब मैं कहूं मेरी आवाज सुनो तो बहू जी आपने कहना है नहीं, जब मैं कहूं मेरी आवाज सुनो तो राजेश ने कहना है कि मोटरसाइकिल, जब मैं कहूं कि मेरी आवाज सुनो तो बाजी किरण आपने कहना है कि ड्रामा देखना है, ठीक है जी। जब मैं कहूं कि मेरी आवाज सुनो तो पाजी अमीन आपने कहना है काम पर जाना है। जब मैं कहूं मेरी आवाज सुनो तो सागर आपने कहना है नहीं 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 मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। जब रूल कुदस हमें आवाज देता है, हमसे बात करता है, ड्रामा, काम, रोटी, धुन, रोना धोना सारी आवाजें हमें क्या कर लेती है, घेर लेती हैं, और पाक रूह की आवाज को हम क्या करते हैं, सुनते ही नहीं। सो इसलिए हमें इस दुनिया में जो ख्वाहिशों से, झूठों से, फरेबों से भरी हुई है, क्या करने की जरूरत है, पाक रूह की आवाज सुनने की जरूरत है। इसलिए 13वीं आयत में क्या लिखा है, 12वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, पास खुदा के बरगजीदों की तरह पाक, बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज और दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्बल का लबास पहनो। जैसे खुदा कहता है खुदा के सब हथियार पहन लो, खुदावंद खुदा कहता है कि हमें किस तरह का लबास पहनना है, पाक, दर्दमंदी, मेहरबानी, फरोतनी, हिलम, तहम्बल का लबास। हम बहुत दफा बाजार में जाते हैं बच्चों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए, कि कौन सा रंग है, इसमें फूल होने चाहिए, इसमें पत्तियां होनी चाहिए, इस पर ये लैस लगेगी, इस पर ये चिलम सितारे का काम होगा, इसे ये करवाना चाहिए, इस पर अच्छे बटन लगने चाहिए, इसके स्टड होने चाहिए, इसका रंग हो ये काटन का हो, 7 कोड़े बोझ की हो, ये लेना देना सब किस लिए करते हैं, ताकि लोग हमें देख कर कहें कि बहुत अच्छा पहना है। पालूस रसूल कहता है कि हमें जो रूहानी लिबास पहनना है, जैसे खुदा के सब हथियार, उनमें कहता है कि कौन सी खासियत नजर आनी चाहिए, वो पाक हो, यानी कि बर्रे के लहू से धुला हुआ जामा, और अजीज, और अजीज हैं, यानी कि दर्दमंदी, दर्दमंदी एक दूसरे के लिए दर्द होना चाहिए, मेहरबानी, सामरी औरत के, सामरी औरत की तरह यसुम सी जैसी मेहरबानी होनी चाहिए, फरोतनी, एक दूसरे पर रहम करने वाले हों, हेलम, और तहम्बल का लबास पहने। जब हम ऐसा कुर्ता, ऐसा चूड़ीदार पजामा पहनेंगे, ये पोशीदा तो होगा लेकिन सबको नजर आएगा कि फलां रहम दिल है। जैसे अय्यूब के बारे में सबको पता था कि वो रास्तबाज और रहम दिल है, वो ईमानदार है। तो हम ईमानदारों को क्या करना है, एक दूसरे से झूठ ना बोलो। बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन सादा तौर पर एक दूसरे से झूठ ना बोलो। तो आज इस हुक्म को अपनी जिंदगी में लेंगे और इस पर गौर व फिक्र करेंगे। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे।